उन्होंने उस पे उन्होंने कहा कि जी ये मैं जो जॉन शेरे है उनको मैं करूंगा सपोर्ट करूंगा और मैं और चूंकि जॉन शेरे अब हार गए हैं तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि मैं नए लीडर के साथ नहीं चल सकता हूं और मैं जो है भरल अपनी जो आपकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है आप उसके साथ चलें और मेरे जो आइडियल्स हैं मैं उनके और वैल्यूज के साथ मैं चलूंगा. Exactly. अच्छा ये इनका बयान उस वक्त आया है जब आज पियर पॉरवर साहब ने आज अपनी जो 9 मेंबर जो टीम है उसका अनाउंसमेंट किया है.
जी एक किस्म की
शैडो कैबिनेट है. शैडो कैबिनेट है तो उसकी जो टीम अपनी का जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया. अच्छा इस ये जो टीम है इसके अंदर जो उन्होंने लोग चुने हैं उसके अंदर हैं टिम उपल जो कि डेप्यूटी लीडर होंगे, मेलिसा लैप्समन जो हैं वो डेप्यूटी लीडर वो भी होंगी, एंड्रयू शियर हाउस लीडर होंगे, कैरी लिन फिंडले जो हैं विप होंगे इनके कंजर्वेटिव पार्टी के, पीए पॉल होस्ट जो हैं वो क्यूबेक के लेफ्टिनेंट होंगे और क्रिस वर्केंटिल डेप्यूटी विप एंड ये जो है कोऑर्डिनेटर, लूक बर्थोल डेप्यूटी हाउस लीडर, जेक स्टीवर्ट कॉकस कमेटी कोऑर्डिनेटर और एरिक डनकन जो हैं वो कॉकस पार्टी लायजन होंगे. तो ये उन्होंने पार्टी अपनी आज जो है उसका अनाउंसमेंट की है. तो शायद हो सकता है कि ये समझते थे कि मुझे भी शायद कोई उसमें हिस्सा देंगे, हिस्सा नहीं इनको दिया. तो वैसे भी जॉन शेरे को ये कर रहे थे सपोर्ट. Yes. तो इन्होंने अब जो है उससे अलहदगी इख्तियार की ऐसे. अच्छा जी जो इकोनॉमिस्ट हैं कनाडा के उन्होंने जो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि हम लोगों को रिबेट के पेमेंट्स देंगे तो उसकी बड़ी आज उन्होंने इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने तारीफ की है. उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्फ्लेशन के होते हुए जो रिलीफ दी है लो इनकम कैनेडियंस को, जीएसटी रिबेट्स जो दिए बहुत अच्छी पॉलिसी है कंपेयर टू ये जो कैश डिविडेंड्स दे रही थी फेडरल गवर्नमेंट वो ठीक नहीं थी. तो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ ये जो जीएसटी रिबेट मिल रहा है ये बड़ा अच्छा है. फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम ये एलिजिबिलिटी वन टाइम कर रहे हैं फॉर टॉप अप ऑफ $500 अंडर कैनेडा हाउसिंग बेनिफिट और ये जो है लोगों को अवेलेबल होगी. तो इसके ऊपर जो माइकल स्मार्ट हैं प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर तो उन्होंने कहा है कि ये जो है इट मेक्स सेंस, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की इट मेक्स सेंस. इन जुलाई ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो थी वो दैट वाज 7.6%. तो वो कहते हैं कि बेशक ये टेम्पररी फिक्स है लेकिन ये बहुत अच्छा होगा इन्फ्लेशन को थोड़ा टेम करने के लिए.
जो पॉलिटिशियन हैं वो इसको अपोज करते हैं.
अपोज कर रहे हैं जाहिर है वो तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं ना तो जाहिर है उनका काम ही है. तो इकोनॉमिस्ट जो है हम तो इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे बिकॉज दिस इज अ फिस्कल पॉलिसी मैटर. तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इन्होंने जो इस वक्त ये फैसला लिया जबकि इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जीएसटी रिबेट्स जो हैं आप लो इनकम ग्रुप्स वालों को दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो फैमिलीज जो हैं जिनके के कोई बच्चे नहीं है और उनकी जो है या कोई इंडिविजुअल है जिसकी के सैलरी 49,000 पर ईयर के पास है तो उसको हम जो है ये ऑफर कर सकते हैं और फिर ऐसा कपल जिसकी 58,500 सैलरी है लेकिन उसके दो बच्चे हैं तो उनको भी ऑफर किया जा सकता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो सारी हमने पॉलिसी जो थी अपने वेबसाइट पर डाली थी और अगर आप उधर फिर भी जाके देखना चाहते हैं तो आपको फिर भी वो नजर आ सकती है स्टोरी आप देख सकते हैं. अच्छा जी आज जो है फिर से अफसोस का बड़ा माहौल था. उसकी वजह यह है कि अभी 2-3 दिन पहले जो है एक पुलिस ऑफिसर जो है उनको सेंसलेस वो जो हुई थी मिल्टन के अंदर शूटिंग उसके अंदर एंड्रयू हॉग की हुई थी और आज जो है एक फिर से यॉर्क रीजनल पुलिस अफसर जो हैं उनकी फिर से आज एक डेथ हुई है. और ये जो हादसा है ये उस वक्त हुआ जब ये अपनी चला रहे थे व्हाइट होंडा एकॉर्ड और एक पोर्श जो था बच्चा जो है वो चला रहा था और मार्कम के एरिया में ये हुई है. उस बच्चे की उम्र जो है जो पोर्श चला रहा था 23 इयर्स है और इनकी एज 38 इयर्स थी. अब ये कॉज ऑफ कोलिजन जो है वो तो नहीं पता चल सका लेकिन उस कोलिजन के बाद इनकी डेथ हो गई है और वो जो ड्राइवर था पोर्श का वो बड़ा जख्मी हो गया था 23 साल का बच्चा तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया. उसकी जो इंजरीज हैं वो कैसी हैं कैसी उसकी हालत है वो तो अभी पता नहीं चला. बहरहाल जो यॉर्क रीजनल पुलिस है वो अब ढूंढने की कोशिश कर रही है. ये जो है इनके बारे में कहा जाता है कॉन्स्टेबल ट्रेविस गिल्सपी इनके बारे में कहा जाता है जी कि ही वाज स्वॉर्न एज कॉन्स्टेबल इन अप्रैल 2020 और ये जो थे यूनिफॉर्म पेट्रोल इनको दी गई थी नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पता नहीं इनकी गाड़ी का कैसे उसके साथ टक्कर हुई.
हेड ऑन कोलिजन हाँ पर कोई बैरियर नहीं है जी. जो ये इलाका है ना ये आपका मेजर मैकेंजी ड्राइव का इलाका है मेजर मैकेंजी
बिटवीन रिचर्ड पियर्सन ड्राइव एंड वार्डन एवेन्यू.
एग्जैक्टली वहां पर कोई बैरियर नहीं है बीच में तो आने और जाने गाड़ियां आती है. सुबह 6 बजे का वक्त था एंड ये अपने काम पे जा रहे थे ये अपने काम पे जा रहे थे और इनका हेड ऑन कोलिजन हुआ एंड
हाँ बिल्कुल, तो उसमें इनकी डेथ हुई है, तो आज फिर से जो पुलिस है वो काफी अफसोस मना रही है इसका। अच्छा जनाब, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने आज अपनी जो फोर्सेज हैं उनको बड़ी शाबाशी दी है, क्योंकि उन्होंने कहा जी के वेरी गुड, ये सक्सेस करते जा रहे हैं, और ये जो है इन्होंने टाउन ऑफ इज़्लम जो है इज़्यम जो है उसको इन्होंने हासिल कर लिया है, और उसके ऊपर इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। वहां पर इन्होंने सेल्फीज ली अपने सोल्जर्स के साथ और उनको शाबाशी दी, और उनको कहा जी के इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और उनको कहा जी कि मैं इनको हीरोज बोलता हूं ये सब लोग जो हैं। और उन्होंने कहा जी कि पहले हम आसमान की तरफ और सितारों की तरफ और सूरज की तरफ देखते थे, लेकिन आज हम सर उठा के सिर्फ एक चीज देख रहे हैं और वो हमारा फ्लैग है, तो ये डेफिनेटली हमारे हीरोज जो हैं उनकी वजह से है, और एनिमीज जो हैं वो चले गए हैं, तो इज़्म जो है वो इन्होंने फिर से कैप्चर किया है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इलाका है, क्योंकि इधर से एक हाईवे जाती है इनके जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खरकीव की तरफ, और फिर उधर से बाकी चीजों को ये जोड़ती है। तो ये आज सोल्जर्स के बीच में थे, तो सोल्जर्स ने इनके साथ जो है ज़ेलेंस्की साहब के साथ तस्वीरें खिंचाई, तो उसमें ये काफी इन्होंने खुशी का इजहार किया। ब्रिटेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जी, उसका आज कहना है कि रशिया ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है इसके ऊपर यूक्रेन पे, वो इरेनियन ड्रोन्स थे। अच्छा, ये पता कैसे चला? ये पता ऐसे चला है जी कि ये एक जो है एक चीज आके गिरी है इधर खार्किव के एरिया के अंदर, और ये डिस्ट्रॉयड जो ये पीसेज हैं इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये एक ड्रोन है, और ये जो है कुपिंस के एरिया में खरकीव टाउन के पास था, और इसके ऊपर मार्किंग्स हुई हैं शाहिद 136 यूएवी की, और इसी तरह जो एक तरफ तो वो रशियन में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ शाहिद 136 यूएवी, तो यानी कि वो कहते हैं जी रशिया ने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारा ड्रोन और हमारे हिस्से हैं, लेकिन वो असल में इरेनियन मेड हैं ये। और यूक्रेन तो बहुत अरसे से, और यूएस जो है वो एक्यूज कर रहा था ईरान को और नॉर्थ कोरिया को कि ये लोग जो हैं अपने वेपन्स इनको रशिया को बेच रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि रशिया के अपने सोर्सेज जो हैं वो जब ड्राई हो रहे हैं, उनकी अपनी जो है सारी वेपनरी खत्म हो रही है, तो वो तेहरान और नॉर्थ कोरिया की तरफ देख ही रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने बड़ी वो होशियारी से किया है, अपने वो मार्किंग्स जो हैं वो रशिया के लगाने की कोशिश किए हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ अगर उसको देखा जाए तो उसके ऊपर शाहिद 136 यूएवी लिखा हुआ है, तो ये ड्रोन जो है डेफिनेटली दिस इज फ्रॉम ईरान जो इन्होंने लिया है। अच्छा जनाब, द गार्डियन की आज एक खबर है, और इसके मुताबिक लोग जो इंग्लैंड के अंदर हैं बेतहाशा यूके की जो पुलिस है उससे नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि, और वो कहते हैं जी कि ये कैसा यूरोपियन कंट्री है, ये कैसा वेस्टर्न कंट्री है जिसके के अंदर आप जो है अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी कर्व्स लगा रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि जिस वक्त ये जो क्वीन की डेथ हुई है और ये मोटरकेड्स जो हैं उनके गुजरने शुरू हुए हैं डिफरेंट सड़कों में से, तो लोग जो सड़कों पे ऊपर खड़े हुए थे ये डिफरेंट साइंस कैरी कर रहे थे। एक ने तो एफ वर्ड यूज करते हुए कहा कि एफ यू नो दिस वर्ड एंड देन इंपीरियलिज्म एबॉलिश मोनार्की, और दूसरों ने कहा कि नॉट माय किंग, किंग चार्ल्स III के लिए ये कहा। तो जो भी बंदा ये चीजें ये साइंस दिखा रहा था उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी। जैसे कि एक लेडी जो थी पार्लियामेंट गेट के बाहर खड़ी थी नॉट माय किंग का साइन लेके, उसको पकड़ा। एक आदमी जो है उसको अभी पकड़ा। ऑक्सफोर्ड के अंदर एक जो एक्टिविस्ट है साइमन हिल, बड़े नोन है वहां पे, उनको तो हैंडकफ किया क्योंकि वो शाउट कर रहे थे इनके अगेंस्ट किंग चार्ल्स के, और बाकी भी लोगों को। तो अब लोग अब वहां पे जो हैं ह्यूमन राइट्स वाले वो कह रहे हैं कि ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, ये एक आजाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर उनको कोई पसंद नहीं है और उसके ऊपर वो आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको क्यों डिटेन कर रहे हैं, क्यों उनको पकड़ रहे हैं
अपनी। मगर ये मेरा ख्याल है पुलिस का भी ये कहना होगा कि ये वक्त के लिहाज से ना ये सही नहीं है अभी। हाँ, आप जब ये मॉर्निंग का टाइम खत्म हो जाए 10 दिन का, उसके बाद फिर आप कर लें, मगर दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर इट।
हाँ, अच्छा, आज भी एडिनबरा की एक औरत जो है सेंट गर्ल्स कैथीड्रल के बाहर एडिनबरा में खड़ी हुई थी, और वो भी यही कह रही थी कि यू नो बैड इंपीरियलिज्म और नॉट माई किंग और इस तरह का, तो उसको भी फिर पकड़ा, फिर उसको डिटेन किया, फिर उसको छोड़ दिया। तो अब जो आज अगर आप देखें ट्विटर के ऊपर जो नया ट्रेंड आज है तो वो वही है, ये जो ट्रेंड है ये नजर आ रहा है #हैशटैग नॉट माई किंग, ये आज जो है ट्रेंडिंग वहां पे ट्रेंड है ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें तो। बहरहाल जी, वहां पे इंग्लैंड में लोग काफी नाराज हैं पुलिस से, वो कह रहे हैं कि ये एक फ्री कंट्री है और जो कोई जिस वक्त जो कहना चाहता है वो कह सकता है, क्योंकि हम कोई पीस तो खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि नहीं, आप जो है ये अलार्म और डिस्ट्रेस और हरासमेंट जो है ये फैला रहे हैं, तो ये इसकी आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। बहरहाल अब देखेंगे क्या होता है आने वाले दिनों में। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन जी, उन्होंने आज कहा है और प्रपोज किया है एक लेजिस्लेशन, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम लेवीज इंपोज करना चाहते हैं वर्थ 140 बिलियन US डॉलर्स ऑन एनर्जी कंपनीज, क्योंकि जो गैस की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत जा रही हैं, और ये जो एनर्जी कंपनीज हैं ये बेतहाशा प्रॉफिट्स कमा रही हैं, तो अब हम इनको ये बताना चाहते हैं कि भई ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो है लो कॉस्ट के ऊपर कर लें, क्योंकि हम कैप करना चाहते हैं आपके रेवेन्यूज, और ये जो है मैं प्रपोज कर रही हूं मेंबर स्टेट्स को भी कि ये जो है इसको ये ब्लो डायरेक्टली लोगों को, आम जनता को किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, तो इन लोगों को बोलें, कंपनीज को, कि अपने प्रॉफिट्स को लो रखें और इनको जो बिल्स हैं लोगों के उनको कम करने में मदद करें, क्योंकि लोगों की एंग्जाइटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिजनेसेस की, हाउस होल्ड्स की, और वो कहती हैं जी पिछले 2 साल में 10 टाइम्स ये गैस प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो लोग बेतहाशा परेशान हैं, तो इसलिए ये जो क्राइसिस कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर इन कंपनीज का भी हाथ होना चाहिए। ये जो EU के एनर्जी मिनिस्टर्स हैं ये अब फाइनली जो है इनके प्रपोजल के ऊपर देखने के लिए और बात करने के लिए एनर्जी क्राइसिस के ऊपर September 30th को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इन्होंने आज यूरोपियन यूनियन के जो प्लेनरी सेशन था उसके अंदर स्ट्रासबर्ग में उसके ऊपर ये बात कर रही थी, और इन्होंने कहा जी कि इट्स नॉट फेयर के लोग सफर करें और कंपनीज जो हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाती रहें जबकि एनर्जी की नीड्स जो हैं वो पूरी भी नहीं हो रही हैं, ना कंपनीज की ना हाउस होल्ड्स की।
जस्ट इमेजिन एक्सॉन एंड शेल की मैंने जिक्र किया था पहले भी आपको कि दो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज, तो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज, और उन्होंने जो इस क्वार्टर का दिया है दे आर इन बिलियंस, प्रॉफिट जो है बिलियंस में है।
जी 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 जी, तो वही उसी का जिक्र उन्होंने किया कि ये सारी जो एनर्जी कंपनीज हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, तो इनको भी उन्होंने इसका नाम दिया क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा कि ये क्राइसिस कंट्रीब्यूशन इनकी क्या है, लोग तो क्राइसिस कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कट कर रही है क्राइसिस कंट्रीब्यूशन में, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं क्राइसिस कंट्रीब्यूशन में, तो इनका क्राइसिस कंट्रीब्यूशन ये होगा कि ये अपने प्रॉफिट्स कट करें,
कट कर,
तो और ये जो उसका फायदा है लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिल्स जो हैं लोगों के बढ़ गए हैं। अच्छा जनाब, आज न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एंड दिस इज आवर स्पेशल रिपोर्ट टुडे। इसकी हम आपको हेडलाइन बता देते हैं और उसके बाद सारी खबरें खत्म होने के बाद ये स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बड़ी स्टोरी जो है इसकी हेडलाइन है हर्मीज बैग्स एंड मिलियंस इन कैश, द फॉल ऑफ मलेशियाज नजीब रजाक। तो नजीब रजाक साहब जो है उनको जेल में भेजा गया उनकी बेगम साहिबा के साथ, हालांकि समझा जाता था कि बड़े ये पावरफुल हैं, लेकिन जुडिशरी ने बड़ा सख्त फैसला लेते हुए, ये प्राइम मिनिस्टर रहे बड़े अरसे तक फिर भी, और प्राइम मिनिस्टर के ही बेटे भी थे, तो इसके ऊपर आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पेशल रिपोर्ट जो ये जो निकाली है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे, लेकिन अपनी खबरें जो है वो खत्म होने के बाद। रॉयटर्स की न्यूज है जनाब, रॉयटर्स की इस न्यूज के मुताबिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि अफगानिस्तान हासिल कर सकता है, और उसकी वजह यह है कि यूएस ने आज अनाउंस किया, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यूएस का, उसने कहा है कि 3.5 बिलियन US डॉलर जो अफगान के सेंट्रल बैंक एसेट्स जो कि यहां पे हमारे पास पड़े हुए हैं और दूसरे कंट्रीज में हैं, उनको हम न्यू स्विस बेस्ड ट्रस्ट जिसका कि हम नाम रख रहे हैं अफगान फंड, उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है, लेकिन चूंकि हम तालिबान जो हैं उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो उनके हाथ में ये पैसा नहीं देंगे। आपको पता ही है कि बहुत अरसे से दोहा के अंदर टॉक्स हो रही थी तालिबान की, वेस्टर्न वर्ल्ड की, और जो है कुछ अरब्स भी उसके अंदर बैठे हुए थे, और वो कहते थे कि तालिबान में लोगों की हालत जो है और इकोनॉमी तो बहुत खराब हो रही है, और अब तो विंटर्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास ना रहने के लिए ना खाने के लिए कोई है, और पॉवर्टी बहुत बढ़ गई है, तो इनका जो पैसा बाहर पड़ा है उसको रिलीज करें। तो आज यूएस ने कहा कि पैसा इनको हम डायरेक्टली नहीं देंगे, ये इसके अंदर न्यू अफगान फंड जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड ट्रस्ट है उसमें डालेंगे, और ये अपने पार्टनर्स के थ्रू अफगानिस्तान में जिस जिस चीज की जरूरत होगी, फूड की, मेडिसिन की, जो भी होगी, वो इस पैसे को यूज करते हुए वो चीजें लेंगे और अफगानिस्तान में पहुंचाएंगे, लेकिन तालिबान के हाथ में हम
कैश नहीं देंगे,
कैश हम बिल्कुल नहीं इनको देंगे, बेशक इनका खुद का पैसा है लेकिन इनको हम नहीं देंगे। और वो कहते हैं जी कि कोई भी पैसे जो है अफगान सेंट्रल बैंक जिसको डैब कहते हैं उसके अंदर ही नहीं भेजा जाएगा, ये हमारे बैंकों के थ्रू पार्टनर्स को दिया जाएगा और वो इसेंशियल्स खरीद के अफगानिस्तान पहुंचाएंगे इस पैसे से, वो उन्होंने आज अनाउंस किया। द हिंदू की आज ये रिपोर्ट है और ये बड़ी ही जो है ये बड़ा आज क्रिटिसाइज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज अनाउंस किया है कि कांग्रेस जो है उसको हमने नोटिफाई किया है कि कुछ जो फॉरेन मिलिट्री सेल एट द ट्यून ऑफ 450 मिलियन US डॉलर्स जो है वो हम पाकिस्तान एयरफोर्स को उसके F-16 के मेंटेनेंस और सर्विसेज के लिए हम दे रहे हैं. और उन्होंने कहा है जी कि हम ये क्योंकि जो इसलिए हम इनको देंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर एंड आवर पॉलिसी इज दैट वी प्रोवाइड लाइफ साइकिल मेंटेनेंस, ताकि ये जो US ओरिजिन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अच्छी तरह से सर्विस किया जा सके और UK और US और पाकिस्तान की जो बायोलैटरल रिलेशंस हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सकता है. वो कहते हैं हम इनको इसलिए भी F-16 की सर्विस जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं क्योंकि ये हमें लगता है कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म की जो कोशिशें कर रहा है पिछले दिनों में जिसमें उसने कामयाबी भी हासिल की है उसके लिए हमारे ये तैयारी इस्तेमाल करेगा. और उन्होंने जो आज US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस थे उन्होंने भी आज बात लोगों से करते हुए कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान को से कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं इनके अगेंस्ट काम करता रहेगा और जो भी मिलिट्री हार्डवेयर हम इनको देते हैं या कोई इक्विपमेंट या कुछ देते हैं तो उसको वो
उनके
यूज करेंगे टेररिस्ट के अगेंस्ट. अच्छा, इसके ऊपर अब जो हिंदू की ये जो रिपोर्ट है ये कहती है जी कि जो इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने आज बेतहाशा इसके ऊपर जो है इतराज किया है. उन्होंने जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात भी की है और अपनी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया और उन्होंने कहा है कि आपने ये क्यों इतने क्रूशल वक्त में जब इलाके में ऑलरेडी जंग इतनी ज्यादा लगी हुई है और पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है टेररिस्टों के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने आज कहा है कि मसूद अजहर जो है वो हमको चाहिए है. तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर कहा था, पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने, कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, वो अफगानिस्तान में है. अब अफगानिस्तान से काउंटर जवाब आ गया कि जी वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में नहीं है. तो इन चीजों के होते हुए इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि आप क्यों पाकिस्तान के हाथ और मजबूत कर रहे हैं उनको यह देकर. उन्होंने कहा जी हम कोई आर्म्स नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अंडर अ स्ट्रेटेजिक अलायंस अग्रीमेंट विद पाकिस्तान ओनली फॉर F-16 उसकी सर्विस के हमने कुछ पार्ट्स दिए हैं और कोई मिलिट्री इक्विपमेंट उसको नहीं दिया है. तो बहरहाल इसके ऊपर भी हिंदुस्तान का काफी एतराज था. तो ये आज काफी जो थी गर्म थी खबर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी. बिहार के अंदर जी ना आज काफी जो है मारामारी चलती रही और मीडिया ने भी कुछ जो है इंडिपेंडेंट मीडिया दो तीन जो रह गए इंडिया में वो उन्होंने इस चीज को जो है वो कवर किया. हुआ ये कि कुछ दिन पहले यहां पे एक महावीर अखाड़ा हिंदू फेस्टिवल चल रहा था और जब ये फेस्टिवल चल रहा था उसके होते हुए मस्जिद के बाहर एक के बाहर जो है कुछ एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने इस्लामोफोबिक जो हैं वो नारे लगाए और कहा यहां से निकलो और ये तुम जो है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. उसकी वजह से जी मुसलमान बाहर निकल आए, फिर इन दोनों के बीच में क्लैशेस हुए. अब जब क्लैशेस हुए तो उसमें जनाब एक बच्चा 8 साल का अपने ग्रैंडफादर के साथ, 70 ईयर ओल्ड थे वो, उनके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था. तो उन क्लैशेस में पुलिस जब आई तो वो उस बूढ़े आदमी को और उस बच्चे 8 साल के को पकड़ के ले गई, बूढ़े आदमी को तो छोड़ दिया और पूरा एक हफ्ता इस 8 साल के बच्चे को जेल में रखा उन्होंने. तो इसके ऊपर आज बिहार में बेतहाशा रिएक्शन आया और उन्होंने कहा जी ये हिंदू जो थे ये स्टिक्स और आयरन रॉड्स कैरी कर रहे थे और लोकल जो मॉस थी उसके बाहर इस्लामोफोबिक स्लोगन्स कर रहे थे. पार्लियामेंटेरियन असदुद्दीन अवेसी जो हैं उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जो पुलिस थी वो राइटर्स जो थे उनको पकड़ती और उनको सजा देती, उन्होंने मुसलमान छोटे बच्चों को जो है टारगेट करना शुरू कर दिया और एक छोटे से 8 साल के बच्चे को लेकर चले गए और एक हफ्ते उसको जेल में रखा विदाउट एनी रीजन. तो ये जितने भी पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ये काम किया है उन सब के अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत है और वो फैमिली जिसका कि ये बच्चा था उसको कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत है.
सही.
तो ये आज वहां पे काफी हंगामा रहा. पाकिस्तान के अंदर जी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो आज बलूचिस्तान में थे और वहां पे जो इलाका है सहपतपुर डिस्ट्रिक्ट वहां पे थे ये. वहां पे इन्होंने जो फ्लड से जो किससे जो अफेक्ट हुए हैं लोग उनसे भी मुलाकातें की और वहां पे अथॉरिटीज जो थी उनके भी कुछ बंदे थे, बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे, उनको इन्होंने ब्रीफ किया और उन्होंने कहा जी कि ये आप इस इलाके को फौरन डी वाटर करना शुरू करें, ये वाटर जो है इसको निकालना शुरू करें आप इलाकों से और ये क्लियर करें इलाके सारे हैं क्योंकि यहां पे अब बहुत सारी डिजीजेस फैलना शुरू हो गई हैं. तो जैसे कि डेंगी और वॉमिटिंग और नोजिया और ऐसे मतलब है लोगों को डायरिया जो हो रहा है गंदे पानी की वजह से. तो यहां पे जो बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि भाई 28 रोड्स तो कंप्लीटली वॉश हो गई हैं बलूचिस्तान में, हमने काफी सारा काम जो है उनके मुताबिक 91% काम हमने रिस्टोर किया है. अब पता नहीं सच है कि नहीं. बहरहाल जी इनके लिए वो कहते हैं जी हमने 11 बिलियन रुपीज का जो है एक प्लान भी बनाया है जिसमें कि लाइव स्टॉक जो सारा बह गया है या मर गया है उसकी हम जो है कॉम्पेंसेशन फैमिलीज को देंगे کریں گے. اور پرائم منسٹر نے اس موقع پہ کہا کہ آپ یہ سب کام کریں لیکن امیڈیٹلی کلین ڈرنکنگ واٹر لوگوں کو پہنچانا شروع کریں اور میڈیسنز دیں, اور یہ آپ کی اب پرائیورٹی ہونی چاہیے. اور لوگوں کو بھی انہوں نے جو بیٹھ کے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, گورنمنٹ آپ کے لیے کام کر رہی ہے.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یونگ ٹاؤن ٹورانٹو.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون اسٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, because we care.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نو ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس اینڈ ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لے لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا صلاح لین لئی اج ہی ایس اینڈ ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000. اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج,
142 کینیڈی روڈ, برامپٹن, 9058747471.
UK, سوئٹزرلینڈ اتے اٹلی تو بعد خالصتان ریفرنڈم دیاں ووٹاں دا اگلا پڑا کینیڈا. کینیڈا وچ خالصتان دیاں ووٹاں دا پہلا سینٹر برمپٹن وچ لگے گا. برمپٹن وچ خالصتان دیاں ووٹاں 18 ستمبر دن ایتوار نوں گور روڈ تے ستھت گور میڈوز کمیونٹی سینٹر وچ سویرے 9 بجے تو لے کے شام دے 5 بجے تک پین گیاں. ہور جانکاری لئی سمپرک کرو 437-423-2669 جاں 437-423-2669.
The most glorious, the most exciting, the most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے. حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کروڑوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں بنیادی غذا اور طبی امداد سے محروم ہیں. آپ کی مدد اور بے لوس احتیاط ان لوگوں کی جان بچا سکتی ہے. آگے بڑھیے اور ریڈیو ساز و آواز کی 16 ستمبر کو ہونے والی ریڈیو تھون میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے.
جی
جی مجد بھائی, تو یہ ہیں جناب حالات پاکستان میں جو چل رہے ہیں. اچھا جی, آج کیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہم بہت دنوں سے بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ تھی, بڑے دنوں سے عمران خان صاحب کو کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ خود سے حاضر ہو, اور ان کے کاؤنسل جو تھے بابر اعوان وہ آتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے. یہ جو ان کے اوپر ہراسمنٹ کا جو کیس, جو انہوں نے ایڈیشنل سیشنز جج زیبا چودھری کے خلاف جو بات کی تھی اسلام آباد کی ریلی میں August 20 میں, اس کے اوپر جو ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگے تھے, تو اس کے اوپر کہا تھا کہ آپ آئیں, تو بار بار ان کو بلایا جا رہا تھا. تو اب آخری بار تیسری بار ان کو بلایا گیا تھا. یہ تھرڈ نوٹس جو ہے ان کو دیا گیا تھا, اور 12 سپٹمبر کو پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی جو تھے انہوں نے ATC جج راجہ جواد عباس حسن سے کہا تھا کہ وہ ابھی نہیں جوائن کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن, لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ فوراً جو ہے ان کو کہو کہ سامنے آئے. تو آج یہ سامنے آئے, اور آج انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنا جو ہے بیان ریکارڈ کروایا ہے پولیس کی, جو اسلام آباد پولیس کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے. اس کے بعد یہ جب اپنا ریکارڈ کرا چکے سٹیٹمنٹ, تو یہ باہر آئے اور جرنلسٹوں سے انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہے کوئلیشن گورنمنٹ, اس کی آپ حالت دیکھیں, انہوں نے کیا ملک کا حال کر دیا ہے. جسٹ ود ان فیو منتھس کوئی چیزیں جو ہیں ان سے سنبھل نہیں رہی ہیں, اور بالکل سری لنکا کے فٹ پرنٹس کے اوپر یہ چل رہے ہیں. और इस मुल्क का एक ही इलाज है कि फ्री और फेयर यहां पे इलेक्शंस किए जाएं। और उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि इवन ड्यूरिंग ये फ्लड टाइम जो है इसमें भी जो है ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो हमारे डोनर्स जो पीटीआई को जो डोनेशंस देना चाहते हैं उनको कॉन्स्टेंटली ये रोक रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप नहीं दे सकते हैं उसको डोनेशन, आपको डोनेशन जो है सिर्फ गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट फेयर, जो जिधर देना चाहता है वो दे और हम जो है वहां पर जो जिधर लगाना चाहता है वो उधर लगाए, तो उसके ऊपर आज इन्होंने बात की। इसके अलावा भी जी पीटीआई की जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने बड़ा हिट किया आज कोलिशन गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी जब भी कोई मसला आता है पीटीआई से रिलेटेड तो वो इस्लाम को बीच में लेके आ जाते हैं चाहे उसका कोई ताल्लुक होता है कि नहीं होता है, विच इज वेरी बैड क्योंकि रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इमरान खान के जमाने में जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर थे नूरुल हक कादरी वो अपने साथियों के साथ असद कैसर और इफ्तिखार दुरानी के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन्होंने कहा जी कि इमरान खान के कमेंट्स को हमेशा कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है और गलत तरीके से उसको ट्विस्ट किया जाता है। ये बातें उन्होंने उस वक्त की और प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की जब पीएमएलएन के लीडर जावेद लतीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनको इमरान खान के बारे में कहा कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो इस्लाम के खिलाफ बात करता है, इसने तो फॉरन मीडिया को ये बयान दिया था कि हम अहमदियों का ख्याल करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर इन्होंने बात करते हुए नूरुल हक कादरी जो है उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैंने इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन किया था तो सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए नहीं रिलीजियस आइडियोलॉजी के लिए भी काम किया था, मैंने देखा है कि यह बंदा डीपली रिलीजियस है और यह करप्ट नहीं है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है और वो करप्ट एलिमेंट्स को पसंद नहीं करता है, वो जो है सही असूल जो है हमारे मजहब के उनके ऊपर चलना चाहता है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके जो तालीमात हैं उनके ऊपर चलना चाहता है, लेकिन उनकी एक तालीम जो है उसमें टॉलरेंस भी है और हर किसी को एक स्टेट में जीने का हक भी है, जैसे कि उन्होंने रेफरेंसेस दिए कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काफर भी रहते थे, दूसरे लोग भी रहते थे, तो सब लोग रहते थे, किसी के खिलाफ उन्होंने मरने मारने का हुक्म नहीं दिया था। तो उसी के ऊपर जब फॉरेन मीडिया ने ये अहमदीज के ऊपर क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा था कि एक मुस्लिम स्टेट के अंदर जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको प्रोटेक्शन दी थी, गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान की भी उनको प्रोटेक्शन दी थी देगी, तो उसको ट्विस्ट इतना करने की जरूरत नहीं है उन चीजों को क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको भी रहने का उतना हक है जितना के दूसरों को। तो ये जो चीजें हैं उनको खामखा इस्लाम का नाम लेके और फितना क्रिएट करके और वायलेंस क्रिएट जो है वो करने की और डिविसिव पॉलिसीज जो है बनाने की जरूरत नहीं है। आज पीआईए ने जी बहुत बड़ा एक फैसला किया है, उन्होंने कहा जी कि हम जो स्टूडेंट्स चाइना पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको 10% फेयर्स के अंदर छुट्टी देंगे और 22% के करीब तकरीबन ये डिस्काउंट्स बनते हैं जो कि वो कहते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स जो कि चाइना पढ़ने जा रहे हैं उनको हम देंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो चेंगडू और जियांग के एरिए में पढ़ने के लिए जाते थे और वैसे भी उनके पास लगेज भी जो होता था 40 kg पहले लेके जा सकते थे, अब पीआईए ने कहा कि आप 80 kg लेके जा सकते हैं। जिस वक्त ये शुरू हुआ कोविड शुरू हुआ और जो चाइनीज गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी थी उसके ऊपर बहुत सारी जो एयरलाइंस थी उन्होंने अपने जो फिर से बेतहाशा इंक्रीज कर दिए थे जिसमें कि एक पीआईए भी थी। आज पीआईए ने कहा कि नहीं हम ये कम कर रहे हैं इसलिए कि हमें शिकायत मिली है कि बहुत सारे बच्चे अब चाइना जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन बच्चों के लिए जो कि चाइना की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और अपनी तालीम पूरी करना चाहते हैं उनको हम ये डिस्काउंट्स देंगे, वो जाएं और अपनी तालीम पूरी कर लें, तो विच इज वेरी वेरी जो है वो गुड जेस्चर है पीआईए का। अरब न्यूज जो है उन्होंने आज एक रिपोर्ट जो है वो कवर की और उसके मुताबिक जो मार्वल वाले हैं उनके खिलाफ जो मुस्लिम वर्ल्ड है खासतौर पे उसमें काफी ज्यादा और कुछ और दूसरे लोगों ने भी बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया है क्योंकि ये इन्होंने अनाउंस किया है मार्वल ने कि हम जो इजरायली सुपर हीरो सबरा है उनको हम वापस लेकर आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये इंतहाई रेसिस्ट और एंटी पैलेस्टाइन कैरेक्टर है मार्वल के अंदर तो इनको नहीं लाना चाहिए। इनको फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में हल्क कॉमिक्स में और उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट जो है D23 एक्सपो में की गई है और उन्होंने कहा जी कि ये जो नई फिल्म आ रही है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसके अंदर सबरा को वापस लाया जाएगा। इजरायली एक्ट्रेस जो है शीरा हास वो अब इसका रोल प्ले करेंगी लेकिन इसके ऊपर जो एतराज है वो ये है कि ये नाम ही जो है ये बड़ा ही ब्रूटल है सबरा क्योंकि 1982 में सबरा और शतीला के अंदर जो मैसेकर हुआ था मुसलमानों का उसकी लोग याद दिलाते हैं। वो हुआ ये था कि इजरायलीज जो थे उन्होंने लेबनान से जो क्रिश्चियंस एंटर होने की कोशिश कर रहे थे यहां से बेरूत के सबरा से वहां पे उनको आने नहीं दिया था और फॉर 36 आवर्स मुसलमानों का मैसेकर किया था इजराइल ने, तो इसलिए इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन है कि इसको वापस जो है क्यों लाया जा रहा है। तो अब देखेंगे मार्वल वाले जी क्या करते हैं। जैकलिन फर्नांडिस जो हैं जी, उनकी प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल कम होते हुए नजर नहीं आ रही हैं। हम आपको काफी दिनों से बता रहे थे कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वाले हैं उनको कॉन्स्टेंटली जो है ग्रिल कर रहे थे, उनको बुला रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे। आज इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ डेली पुलिस जो है उन्होंने भी आज इनको बुलाया है और उनकी काफी 8 घंटे तक ग्रिलिंग की है इन द एक्सटॉर्शन केस ऑफ सुकेश चंद्रशेखर, जिनके के साथ ये रोमांटिकली लिंक थी और आज इनके साथ पिंकी ईरानी भी थी, अ पर्सन अलेजली जिन्होंने कि इनको इंट्रोड्यूस किया था सुकेश चंद्रशेखर से। ये केस जो है 200 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस का है और इसमें कहा गया था, ईडी ने कहा था कि ये जो सारे गिफ्ट्स और चीजें, ना सिर्फ ये, इसकी फैमिली और फ्रेंड्स भी जो हैं ये सुकेश चंद्रशेखर के फायदे उठाती थी, लेती थी, तो इसलिए बिकॉज ये इल बिगॉटन मनी था, तो इसलिए अगर इसने उस पैसे से गिफ्ट्स और चीजें ली हैं तो ये भी जो है क्रिमिनल उसके अंदर आती है। तो ईडी ने यह भी कहा था कि ये जानती भी थी कि इस आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, फिर भी मॉनेटरी जो है वो फायदों के लिए ये उस आदमी के साथ जुड़ी रही। अब दूसरी खबर आई है जी कि एक और लड़की जो एक्ट्रेस है इनकी बॉलीवुड की, नौरा फतीही, वैसे बाय द वे ये कैनेडियन नेशनल है माजिद भाई, अल्जीरियन है ऑफ कैनेडियन नेशनैलिटी, तो ये वहां पे अब इंडिया गई हुई है, वहां पे करती है काम। नौरा फतीही जो है इसको भी बुलाया जाएगा क्योंकि अपेरेंटली इसने भी सुकेश चंद्रशेखर के बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए थे।
अच्छा।
तो अब वो कह रहे हैं जी कि ये इसका जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी के केसेस हो जाए तो उसके बाद फिर नौरा फतीही जो है उसको भी बुलाया जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है जी और इसके मुताबिक हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था एक दफा कि दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म जोगी आ रही है, उस सिलसिले में पीटीआई ने आज इनका एक इंटरव्यू किया है और ये जो इनकी फिल्म जोगी आ रही है 1984 के जो एंटी सिख राइट्स थे उसके ऊपर है। दिलजीत दोसांझ ने जो आज इंटरव्यू दिया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, उन्होंने कहा जी कि इसको राइट्स नहीं कह सकते क्योंकि राइट्स जो होते हैं वो दो लोगों के बीच में होते हैं, वो पूरी पूरी कम्युनिटीज जो है उनको अफेक्ट नहीं करते हैं, ये पूरी कम्युनिटी को, वो कहता है जी मेरी तो पैदाइश हुई थी 1984 में, जिस वक्त अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के जो सिख बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने उनको मार दिया था और उसके खिलाफ जो है सिखों सारों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मारा गया था, तो मैं तो जब से पैदा हुआ हूं मैं यही सुन रहा हूं राइट्स राइट्स, ये राइट्स नहीं है ये जीनोसाइड है, इसको जीनोसाइड कहना चाहिए। अच्छा, अब जबकि इन्होंने ये बात कही है कि इनको सिख जीनोसाइड कहना चाहिए और ये जो फिल्म आ रही है इनकी जोगी, तो इसके ऊपर लोगों की हिंदुस्तान में फिर से कान खुल गए हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने तो आज तक माना ही नहीं है इसको जीनोसाइड, वो तो इसको राइट्स ही कहते हैं। आपको पता ही है कि कैनेडियन गवर्नमेंट से कितने वो नाराज हो गए थे, ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जिस वक्त जो हरिंदर मल्ली एमपीपी थी वो ये लेकर आई थी तो इन्होंने जो पास किया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा इसको बुरा मनाया था कि तुमने ये कैसे किया है, तो जो थे जस्टिन ट्रूडो साहब उनको बड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी थी कि ये हमारा सिर्फ एक सूबा है, ये हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं है, हम इसको नहीं समझते हैं जीनोसाइड, तो इन्होंने आज कह दिया। तो अब लोग कह रहे हैं कि अब इसका क्या करियर रह जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, अब तो इसको शायद फिल्में बिल्कुल नहीं मिलेंगी और इसकी फिल्म जो जोगी भी आने वाली है ये अब कौन देखेगा। बहरहाल जी इन्होंने आज कहा, इन्होंने कहा जी इसको राइट्स नहीं जीनोसाइड कहना चाहिए, ये जो फिल्म जोगी है इसको बना रहे हैं अली अब्बास जफर साहब और ये जो भी कोई इनकी सिख कम्युनिटी की एग्नी और वो थी जिसमें के इनको पकड़ पकड़ के मारा गया था दिल्ली में और बाकी भी हिंदुस्तान में उसके ऊपर ये स्टोरीज हैं, तो वो उन्होंने यही कहा कि ये इतनी खौफनाक स्टोरीज हैं, हमने सुना तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये है,
अच्छा ये भी है ना कि उसको रिलीज करने देंगे नहीं देंगे उसको,
दैट्स अ थिंग एक्चुअली, यही बात है। और चलो रिलीज तो एक फिल्म नहीं होगी तो चलो उसका जो एक बंदे का नुकसान होगा, इसका फिल्मी करियर तो अब खत्म हो जाएगा फिर क्योंकि जो इसने बात आज की है। अच्छा जनाब, हमारे बाबर आजम जो हैं वो आईसीसी की T20 टेबल आ गई है और उसके ऊपर अब जो है ये फर्स्ट नंबर पे नहीं रहे हैं, अब ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं, नंबर वन पे आ गए हैं मोहम्मद रिजवान और दूसरे नंबर पे जो हैं साउथ अफ्रीका के एडन मार्कम जो हैं वो हैं और हमारे बाबर आजम अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं आईसीसी T20 टेबल के ऊपर। और कोहली जो हैं अलबत्ता उन्होंने चूंकि एक सेंचुरी बनाई थी 3 साल के बाद और 276 रन बनाए थे एशिया कप के अंदर, तो ये इनकी जो थी बहुत ही नीचे पोजीशन चली गई थी, तो इम्प्रूव करके 14 पोजीशन इम्प्रूव करके अब ये 15th पोजीशन पे जो है आ गए और बाबर आजम नीचे चले गए हैं। पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने आज अनाउंस किया है कि हम जो ये 7 मैच T20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली है या कि ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड के या आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उसके लिए कल यानी के 15th को ये अनाउंसमेंट करेंगे चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम अपने स्क्वाड का, पीसीबी का जो हेडक्वार्टर है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, उसमें इंग्लैंड जो है वो आपको पता ही है कि 20 सितंबर को आ रहा है और अपने मैचेस जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची से शुरू करेंगे। ये ट्राई सीरीज जो है अक्टूबर 7 से फिर जो है फिर उसके बाद ट्राई सीरीज जो है वो अक्टूबर 7 को होगी जो कि है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो होगी और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप जो है वो अक्टूबर 16 से शुरू होगा। तो ये इसके लिए सारे स्क्वाड जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे कल। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज वेरी गुड न्यूज अगेन, सैफ विमेंस जो चैंपियनशिप्स चल रही हैं, तो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी बच्चियां जो हैं उन्होंने मालदीव्स को आज हराया है 7-0 से ग्रुप ए के मैच में एट दशरथ रंगासाला स्टेडियम के अंदर। और इसके अंदर जो नादिया खान है उन्होंने 4 गोल्स बनाए हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 के इन बच्चियों ने इतनी अच्छी गेम दिखाई है। अपने जो ओपनिंग के दो मैचेस थे इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट वो दोनों ये हार गई थी। पाकिस्तान के जो हेड कोच है अदील रिस्की उन्होंने कहा जी कि इससे बेटर जो है वो क्या और गेम परफॉर्म कर सकती है उस सूरत में कि पाकिस्तान की बच्चियों ने इंटरनेशनल फुटबॉल में एक पूरी जो डेकेड है उसमें नहीं खेला था और उसके बाद अब इन्होंने खेलना शुरू किया क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। तो इसलिए जो है इनकी जो ये आज की जीत है उसके ऊपर हम बड़ा खुश हैं। एंड जनाब स्टे ट्यून्ड, हम आते हैं थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे स्पेशल रिपोर्ट ऑन मलेशिया के नजीब साहब के ऊपर।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, 4 व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रब्ता कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 905-279-4754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड मिसिसागा।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 905-872-1100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। आप मुझसे 905-513-0012 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या canimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
ग्रिल इन द हट मिसिसागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 905-405-8383। ग्रिल इन द हट,
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
ग्रिल एंड चिक, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500. Grill and Chick.
گاڑی گھر یا کمرشل جیسا کہ بزنس ٹرکس ڈیلیوری وہیکلز کارگو وینز ورک شاپس گروسری اسٹورز ریسٹورینٹس کی انشورنس کے لیے وقار عظیم سے رابطہ کیجیے گا وقار عظیم یقینی بنائیں گے کہ کار گھر یا کمرشل انشورنس کم از کم ریٹ پر لے کر دیں مگر کوریج آپ کو بہترین سے بہترین ملے یقیناً اپنے پیسے اور وقت کی بچت کے لیے ایماندار اور ریلائبل سروس موسٹ کمپیٹیٹو ریٹس کے لیے وقار عظیم 416-302-2522 302-2522
Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
failed to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding.
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 905-454-2112 سونا یعنی گولڈ خریدنا یا بیچنا ہے تو ایک قابل اعتماد نام روبی جیولرز یاد رکھیے گا اسلم یا اکرام بھائی سے ملاقات کیجیے گا ہاتھ کے بنے ہوئے یا مشینی زیورات اتنی ویرائٹی ہے چوڑیوں اور کروں میں چینز میں آپ سونے کی خریداری کے لیے ایک با اعتماد نام روبی جیولرز وزٹ ضرور کیجیے گا پروگرام کا ریفرنس دیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور سونے کی ریپیئر کوئی چارج نہیں روبی جیولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ مالٹن میں روبی جیولرز
جی
ہاں جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی اپنی اسپیشل رپورٹ آج کی نیو یارک ٹائمز نے جناب آج یہ رپورٹ لکھی ہے اور اس کا نام ایک دفعہ سے پھر ہم آپ کو اس کی ہیڈ لائن بتا دیں ہرمیز بیگ اینڈ ملینز ان کیش دا فال آف ملیزیاز نجیب رزاق نجیب رزاق صاحب جو کہ ویسے بڑی دیکھنے میں بھولی بھالی سی اور بزرگ سی شخصیت لگتے تھے ان کے آج کچے چٹے کھولے ہیں جی انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں وہ کہتے ہیں جی کہ فارمر ملیشین پرائم منسٹر جو تھے نجیب رزاق جن کی اس وقت عمر جو ہے وہ 69 ایئرز ہے وہ آج وہ پیشیاں ان کی چل رہی ہیں نا ویسے تو وہ جیل میں رہتے ہیں لیکن ان کی پیشیاں چل رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایک اپنی ویہیکل میں آئے تھے کورٹ روم کے اندر وہاں پہ جو ہیں بہت سارے پریزن گارڈز تھے پولیس افسرز تھے کچھ جو تھے ان کے پاس تو آرمز بھی تھے ان کو ففتھ فلور جو ہے کورٹ روم کا اس میں لے کر آئے فار سیکنڈ ٹرائل آن کرپشن چارجز ان کے اوپر چار کیسز ہیں تو سیکنڈ ٹرائل جو ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے لیکن رہ یہ جیل میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ونس یہ نجیب صاحب جو ہیں بڑے پیمپرڈ تھے یہ اور یہ ہی ہمسیلف واز خود پرائم منسٹر بننے سے پہلے ملیزیا کے جو سیکنڈ پرائم منسٹر تھے عبد الرزاق حسین ان کے بیٹے تھے تو بڑی انہوں نے پیمپرڈ لائف گزاری تھی اور ان کو سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ بالکل ہی انٹچبل ہیں اور یہ
ویری پاورفل مین
اور بڑے لوگوں کے ساتھ یہ قریب تھے فار ایگزامپل جیسے ٹرمپ کی طرح کے لوگ تھے اور ٹرمپ صاحب جب آئے بھی تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ میرا بڑا فیورٹ پرائم منسٹر ہے نجیب جو ہے اور وہ جی کہتے ہیں جی کہ اب یہ فیورٹ آدمی جو ہے 12 ایئر سینٹنس جو ہے اس کو سنائی گئی ہے اور اس کو جیل ہوئی ہے ان ملینز آف ڈالرز آف گورنمنٹ فنڈز کا جو انہوں نے فراڈ کیا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ویسے بھی ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بڑا ہی بیڈ تھا ان کا جو پرسنل منترا تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے کیش از دا کنگ کیش از دا کنگ تو لوگ جو تھے ان کی بڑی کھسکتی تھی اس سے ہٹتی تھی بلکہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک فنڈ وہاں پہ بنایا ہوا تھا ملیزیا کے اندر جس کا کہ نام تھا یو نو دس ملیزین فرسٹ ملیزین ڈیولپمنٹ برہیڈ جس کو کہ کہتے ہیں 1MDB اس کے اندر تو وہاں سے ملینز آف ڈالرز یہ نہ صرف یہ کہ اپنے پرسنل یوز کے لیے لیتے تھے بلکہ اپنے الیکشن کیمپین کو فنڈ کرنے کے لیے بھی لیتے تھے ان کی جو وائف ہیں روزما منصور 70 ایئرز ان کی ایج ہے ایک سال ان سے بڑی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو نوٹوریس تھی ملیزیا کے اندر ایکسٹریملی ایکسٹراویگنٹ یہ جیولری پہنتی ہوتی تھی اور ہرمیز بیگ یہ جو ہیڈ لائن ہے نا ہرمیز بیگ اینڈ ملینز ان کیش تو ہرمیز بیگ جو ہے ان کی وائف کو جو ہے وہ شو کرتا ہے اور ملینز ان کیش جو ہے وہ نجیب صاحب تو وہ کہتے ہیں جی ہرمیز بیگز ان کے پاس ہوتے تھے تو ان کو بھی اب 10 ایئر کی جو ہے جیل سینٹنس دی گئی ہے
دونوں کو ملی ہے
اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ برائبز لینے کا ان کے اوپر الیجلی ان کے اوپر وہ ہے الیگیشنز ہیں اور اس کے علاوہ کورٹ نے ان کو 216 million US ڈالر کے فائنز بھی کیے ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگ جس وقت یہاں پہ آئے کورٹ میں تو ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ اتنے پاورفل آدمی کو سزا دیں گے لیکن ہیٹس آف ٹو دیم کہ ان کو دیا گیا. جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اس کے ملیشیا کے مہاتیر محمد, وہ کہتے ہیں جی ہم حیران ہو رہے تھے کہ کورٹ جو ہے وہ تو شیور کر جائے گی, وہ ڈر جائے گی, ان کے روب اور دبدبے اور ان کی اس کی وجہ سے وہ ڈری نہیں ہے اور انہوں نے جو ہے ان کو سزا دی ہے, وچ از اے بگ تھنگ. وہ کہتے ہیں جی یہ جو کپل تھا یہ فیمس تھا یہ ہر قسم کے غلط کام کرنے کے لیے, اور یہ بہت عرصے سے حکومت ملیشیا کے اوپر کر رہے تھے, پہلے والد کرتے تھے پھر بیٹا صاحب کرنا شروع ہو گئے, تو فائنلی لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کتنا کرپٹ آدمی ہے. تو 2018 میں انہوں نے ان کو نکالا, اور جو فارمر پرائم منسٹر مہاتیر محمد جو تھے ان کی جو کوئلیشن گورنمنٹ میں وہ جو بنائی ہوئی تھی انہوں نے, اس نے پھر ان کو ڈیفیٹ کیا اور یہ فائنلی جو ہے پاور میں سے نکلے. وہ کہتے ہیں جی ان کے خلاف 2018 میں جانے کے بعد کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں وہ پھر شروع کی گئیں اور ساری ان کے اوپر پروب بٹھائی گئی, اور پروب جب بٹھائی تو اس پہ جو مہاتیر محمد کی جو کوئلیشن گورنمنٹ آئی اس نے کہا کہ یہ سارا فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ جو ملینز آف ڈالرز ہیں یہ کہاں پہ گئے ہیں اور یہ کیسے استعمال کیے جا رہے تھے. تو اس میں پھر یہ پتا چلا جی کہ صرف یہ الیکشن کیمپینز پہ ہی نہیں یہ گورنمنٹ کا اور لوگوں کا پیسہ, بلکہ اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی کیا جا رہا تھا, جس میں کہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں انگلینڈ میں اور یورپ میں جا کے شاپنگ ملینز آف ڈالرز کی جو ہیں وہ شاپنگ کرتی پھرتی تھی. اس کے علاوہ یہ پروب شروع کیسے ہوئی, یہ پروب شروع اس طرح سے ہوئی نیو یارک ٹائمز کہتا ہے, اور ہم نے اس کو کیسے فالو کرنا شروع کیا جب ان کی کنوکشن ہوئی, تو کہ یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ 2016 سے ہی انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ساری یہ جو ال بگوٹن منی ہے, اور یہ جو ان کے بڑے یارانے تھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ کہ کیوں یہ اتنے کلوز ہیں, کیونکہ ایک پوائنٹ پہ انہوں نے ٹرمپ صاحب سے کہا تھا کہ یہ جس مصیبت میں مجھے لگ رہا ہے میں دلدل میں جا رہا ہوں آپ مجھے نکالیں کیونکہ آپ بڑے پاورفل دنیا کے آدمی ہیں. تو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ایک انویسٹیگیشن بٹھائی کہ بھائی یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ اتنا یارانہ کیوں ہے اور یہ کر کیا رہا ہے یہ بندہ, اس کا اتنا ایکسٹراویگنٹ اور اس کی بیوی کا ایکسٹراویگنٹ لائف سٹائل کیسا ہے. تو انہوں نے پتا لگایا جی کہ 731 million یو ایس ڈالرز اس وقت تک, جب نیو یارک ٹائمز کہتا ہے جب تک یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس وقت تک, اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں اور کتنے ملینز آئے, اس وقت تک 731 million یو ایس ڈالرز جو ہیں یہ اپنے فورن اکاؤنٹس میں باہر ٹرانسفر کر چکے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کیا تھا جس کے کہ, اور یہ سارے کا سارا پیسہ وہی 1MDB وہ جو ہے ملیزین ڈیولپمنٹ بر ہیڈ جو ہے اس سے یہ سارا پیسہ جو ہے جو کہ لوگوں کے جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں سے یہ لے کے جو ہیں وہ یوز کر رہے تھے. اچھا اب جو ان کا امیج ہے وہ کہتے ہیں جی ویسے تو بوڑھے سے ہیں یہ, بڑے وہ شکل سے بھی سویٹ سے لگتے ہیں, تو لوگوں کو ویسے بڑا پیار آتا تھا ان کے اوپر کہ دیکھو جی کتنی جو ہے وہ ہے مومنہ قسم کی ان کی شکل ہے, تو بڑا لوگوں کو پیار آتا تھا, لیکن کرتوت عام لوگوں کو پتا نہیں تھے کہ یہ بیچ بیچ میں سے کیسے
ان کی بیگم نے پھنسا دیا.
ہاں وہ کہتے ہیں جی ان کی بیگم, نیو یارک ٹائمز کا یہ سینٹنس ہے ان کی بیگم کے لیے, وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی بیگم جو روزما ہے شی از پرسیوڈ دا ماڈرن لیڈی میکبیتھ, کہ ہر غلط کام کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کو اور گورنمنٹ کے فنڈ سٹیل کرنے کے لیے اپنی شاپنگ سپریز کے لیے جو اس کو انسٹیگیٹ اور پش کر رہی تھی. اور اگر جن لوگوں نے میکبیتھ جو ہے وہ شیکسپیئر کی ایک پلے ہے بڑا فیمس, جو اس کی جو گریٹ ٹریجڈیز ہیں اوتھیلو وغیرہ ان میں سے ایک میکبیتھ بھی ہے, تو میکبیتھ کے اندر اگر آپ کو پتا ہوئے کہ کس طرح کنگ میکبیتھ کو اس کی وائف جو ہے وہ انسٹیگیٹ کرتی تھی, انفلوئنس کرتی تھی غلط کام کر مرڈرز کرنے کے لیے, تو اس کو بھی یعنی اتنا اس کو کرول انہوں نے کہا ہے نیو یارک ٹائمز نے کہ لیڈی میکبیتھ کا اس کو نام دیا. اچھا وہ کہتے ہیں جی جس وقت اب ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور ریڈز پڑی ہیں ان کے گھر کے اوپر, تو ان کے پاس سے جناب یہ جو اس کی بیگم صاحبہ ہے 27.3 million یو ایس ڈالر کا پنک ڈائمنڈ کا ایک پینڈنٹ ملا ہے. یعنی اور تو چیزیں آپ چھوڑ ہی دیں جو فرنیچر تھا ملینز آف ڈالرز کا اور گاڑیاں اور یہ وہ, ایک پینڈنٹ جو ہے 27.3 million ڈالرز کا پنک ڈائمنڈز کا ہے. اس کے علاوہ ان کو 273 million ڈالرز ان کیش ان کے گھر سے ملے تھے, بے تحاشا لگژری گڈس تھے, 567 دنیا کے جو ٹاپ برانڈز ہیں ان کے ہینڈ بیگز تھے, 567 ہرمیز شنیل ویلنٹینو یہ سارے جو ہیں لوئی وٹون ان کے جی 500, یعنی کہ وہ تو مارکوس کی بیوی جیسی تھی, ویسی ہو گئی, یہ بھی ہے نا ویسی ہو گئی. 423 watches موسٹ ایکسپینسو, اور ہر واچ کی قیمت وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ $100,000 سے اوپر تھی, یعنی 5-5-6-6 lakh dollar کی بھی واچیں تھیں, 423 اس طرح کی واچیں. ٹھیک ہے جی. 14 ٹیاراز, وہ جو پہنتے ہیں نا جب آپ مس ورلڈ بنتے ہیں تو وہ پہنتے ہیں, وہ ٹیارا جو ہے 14 ٹیاراز ڈائمنڈز کے بھرے ہوئے, وہ سارے جی ان کے پاس نکلے. تو اب وہ کہتے ہیں جی, تو یہ ساری جب چیزیں نکلی تو پہلے تو کورٹ نے کہا ان کو 4 کاؤنٹس آف کرپشن کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا چارج. اب کورٹ کہہ رہی ہے 7 کاؤنٹس آف کرپشن پہ ان کو چارج کیا جائے گا, کیونکہ جیسے جیسے وہ چیزیں نکل رہی ہیں اور جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں
ان کی 10 سال سے اور بڑھ سکتی ہے.
ان کی 12 سال ہے, بیگم کی 10 سال ہے.
ہاں
تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ریوائز ہو سکتی ہے, وہ ریوائز ہو سکتی ہے. تو وہ اس کے وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر جو کرمنل یہ جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں بیکاز آف کرمنل بریچ آف ٹرسٹ, ابیوز آف پاور دیٹ ہی یوز ان لیگلی اینڈ ٹرانسفرز آف 9.8 million $ ٹو ڈفرنٹ اکاؤنٹس, جو ایک تو اکاؤنٹ پکڑا گیا اور کچھ کیش پکڑا گیا, وہ تو پکڑا ہی گیا. یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اس کا بھی پیسہ شاید کسی باہر سوئس بینک میں ہوگا, تو یہ ابھی تک وہ ان کو نہیں مل سکا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو لوور کورٹ جو تھی پہلے اس نے ان کو سزا دی تھی, اور اب جو ملیشیا کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپیل کی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو لوور کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ جو ہے وہ کرنا ہی پڑے گا. اور ان کو جو ہے ان کو آج کی بھی وہ کہتے ہیں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے بعد ان کو کہا جی جیل لے کے جاؤ ان کو بھی اور ان کی بیگم کو بھی. تو جناب اے وڈے وڈے کام خالی پاکستان نہیں ہوندے.
نہیں مگر یہ کہ
جناب بیگز دیکھیں 567
وہ ڈرے نہیں وہ,
اینڈ 423 واچز, مائی گاڈ ماجد بھائی اتنی
عوام کا لوگوں کا پیسہ ہے,
لوگوں کا پیسہ ہے سارا, وہی تو ہے نا, اسی کا تو ہے نا, وہی تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ کس میں یہ ان کا وہ جو ہے وہ جو فنڈ ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈ, اس کا
والد صاحب کو دیکھا ہوگا, پاورفل ہی واز ویری پاورفل مین, تو وہ ان کو دیکھ کے وہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے.
لیکن اتنی کرپشن, اتنا پیسہ گورنمنٹ کا کھایا ماجد بھائی اس کا, غریب لوگوں کا,
تب یہ اس جگہ پہ پہنچ کے پھر وہ کرپشن نہیں کہتے نا اس کو.
اچھا
ان کا حق ہے,
وہ ان کا حق ہے. او اچھا, غریب لوگ مرتے رہے بے شک کوئی بات نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, ان کا حق ہے.
ان کا حق ہے یہ, اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں.
مجھے بڑا وہ پیارا لگا سینٹینس نیو یارک ٹائمز کا, کہتے ہیں شکل ان کی دیکھو تو بڑے معصوم سے لگتے تھے بابا جی, اور لوگوں کو بھی بڑا پیارا لگتا ان کو دیکھ کے, لیکن کرتوت نہیں پتا تھے ملیزینز کو زیادہ تر کہ یہ کیا ہے. یہ تو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے جب
بیسیکلی دے آر ویری سافٹ اسپوکن,
ہاں ویری سافٹ اسپوکن, نائس کائنڈ, ہاں ہاں, اور بڑے پیار محبت سے بات کرنے والے لوگ ہیں. Yes, لو پروفائل کے پنجابی نہیں ہے نا. تو
مگر یہ ان کی بیگم بھی کوئی مطلب,
ہاں یہ دیکھیں جی
بیگم بھی کوئی اتنی مطلب وہ نہیں ہے,
حسین نہیں ہے,
حسین نہیں ہے,
لیکن بڑی ٹھاٹ پاٹ والی تھی ماجد بھائی, بڑے جس وقت یہ
سوری ٹو سے,
ہاں ہاں نہیں یہ تو اب جیل میں آئے ہوئے ہیں نا ماجد بھائی, ویسے تو بڑی ٹھاٹ پاٹ والی تھی اور بالکل وہ امیلڈا مارکوس کی طرح کی لگتی تھی. یہ وہ اپنا سوٹ شوٹ بنایا, بال وال بنائے, اب یہ بیچاری ادھر جیل میں تو بال نہیں بنا سکتی نا جی, تو اب یہ تو دیکھیں نا اس کو لا رہے ہیں جیل میں لا رہے ہیں.
تو یہ ان کا جو ہے پھر 10 سال کا مطلب ہوا کہ یہ 5 سال میں باہر آ جائیں گی.
ہاں مے بی یس
ہے نا, اور دے اسٹل ہیو ملینز آف ڈالرز.
او یس یا, لیکن اب وہ نکال رہے ہیں ان کا نا وہ سارا ہلے ہلے سارا,
انلیس وہ 10 سال کے بعد پھر اور کوئی کیسز میں اور آگے بڑھا دیں گے. ہاں
تو ہاں بیکاز دے سٹارٹڈ وتھ 4 cases, اب انہوں نے 7 پہ بڑھا دیے نا, اب انہوں نے کہا کہ نہیں اب 7 کرمنل کیسز ان کے اوپر اور اس کے اوپر ان کو پروب کیا جائے گا.
اچھا ابھی یہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہے,
یہ فائنل ڈیسیجن ہے, جیل میں ہی رہیں گے وہ, لیکن وہ کیسز کے اوپر ٹرائلز چلتے رہیں گے نا, ٹرائلز بھی چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ, کیونکہ وہ جواب بھی مانگنا چاہتے ہیں نا ان سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ جواب بھی دو اس کو,
چھپاؤ پیسے.
ہاں ہاں, تو اگر 10 سال کیس چل رہا ہے تو 10 سال یہ ویسے انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے.
پنجاب پولیس کے پاس,
او یا پنجاب پولیس نے تو 2 منٹ میں باتیں ساری نکلوا لینی,
سارے اگلوا لینا, کہاں پیسہ ہے جی میرا پورا,
آپ آیا نا اور کتنے کتنے پیسہ رکھے تھی, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی ہمارے پنجابیوں کی طرح ہیں بھی نہیں, اتنی مار تو کھا بھی نہیں سکتے, یہ تو بےچارے بڑے ایلیٹ کلاس کے بندے ہیں, ان کو تو ایسے پنجاب پولیس نے ہلکا سا ایسے بھی کیا تو انہوں نے ڈر
جانا. ساری
یہ تو ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں بڑے ہٹے کٹے موٹے تازے, پنجاب پولیس کی جو ہے وہ مار کھا لیتے ہیں, تو یہ باقی تو دنیا نہیں پنجاب پولیس کی مار کھا سکتی.
ہاں جو یہ تو مطلب
جو ٹھنڈے پڑتے ہیں
سزا دینی ہے تو بھائی
پنجاب پولیس کے حوالے کرو تھوڑے دن,
ایک ہفتہ کافی ہے, ایک ہفتے میں سارا پتہ لگ جائے گا کتنے ملے.
میں وہی کہہ رہی ہوں ماجد بھائی, یہ تو اتنے پولے لوگ ہیں ہفتہ بھی نہیں لگے گا, 2 دن میں انہوں نے طوطے کی طرح بولنا شروع کر دینا.
Uh, ہاں جی ایک آدھ کالرس بھی لے لیتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم.
ہاں جی السلام علیکم جی. ساجد جی جو خبر دے رہے ہیں نا
جی
ملیشیا پرائم منسٹر دی انکوائری کی سردار امر سنگھ سی.
ہاں جی 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 بالکل بالکل. لیکن اصل پروف ساری شروع ہوئی 2016 یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرفوں. انہوں نے کیا کہ پیان سڑے جڑا ہے وے ایک تے بندیاں دے نال بڑا کلوز ہے, بڑا اس دا ایکسٹراویگنٹ سٹائل ہے, ہو کی رہا ہے. ادھروں پھر ساری انکوائری چلی تے پھر ادھروں پھر جڑا جس ویلے نکلے نا پھر 2018 تے پھر انہاں دا جڑے ہوتے وے او ملیشین گورنمنٹ جڑی ہے اس نے پھر پروب بٹھائی تے پھر پتہ چلیا سارا. یس سر امر سنگھ جی تھے سن بالکل.
بہت مہربانی
امر سنگھ.
ہاں بہت مہربانی جی. جی ہلو السلام علیکم.
السلام ماجد بھائی آف ایئر.
آف ایئر اوکے جی.
آف ایئر بات.
اوکے جی بہت مہربانی آپ کی. ہول پہ رہیے آپ بھی آف ایئر بات کریں گے آپ سے. ان دا مین ٹائم ایک دو اسپانسرز کے پیغامات لے لیں ہم.
ایئر کو آف کر لینا آپ. ایئر کو آف ہے جلدی سے آف ہے.
ایئر کو آف کر رہے ہیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں 416-620-1778 416-620-1778 ہمارا فون نمبر ہے. اف یو وانٹ ٹو پٹ ان یور ٹو سینس ان دیئر بائی آل مینس گیو اس اے کال. ان دا مین ٹائم دو اسپانسرز کے پیغامات دیتا ہوں, پروگرام میں واپس آئیں گے.
Pizza's Pros and Wings, 6 locations to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yahoo, Mississauga. Fresh aur mazedar pizzas ki variety. Ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out call
905-789-8888
Akal Truck and Lube, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100.
ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ. دانت نکلوانے ہیں, لگوانے ہیں, کراؤنز ہیں, بریجز ہیں, ایون اگر امپلانٹس یا بریسز لگوانا چاہتے ہیں تو برامپٹن میں ہینسن اور کوئنز کے انٹرسیکشن پہ, اور اب سگما ڈینٹل کلینک ولیمز پارک وے اینڈ کرائسلر کے انٹرسیکشن پہ. بہترین ڈینٹسٹ تمام انشورنس پلان کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ بنائیے گا, ساز و آواز کا حوالہ دے کے ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے گا. ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ, 905-457-8661.
Family is everything, and no matter where they are in the world, connecting with them just got a little easier. Now when you send a CIBC Global Money Transfer, loved ones abroad can pick it up in cash the same day at their local MoneyGram location. And with no transfer fee, you'll have more to share. It's the perfect way to help them achieve their goals. With a CIBC Global Money Transfer, family is never far away. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. Visit cibc.com/cashpickup.
اگر آپ کے گھر میں بیڈ بگز ہیں یا کچن میں کاکروچز ہیں یا بیسمنٹ میں چوہے دوڑتے پھر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی نام یاد رکھیے, بایو کیم پیسٹ کنٹرول. ہم آپ کو بہترین کوالٹی کی سروس بہترین ریٹس پر فراہم کریں گے. اس کے لیے ڈائل کیجئے 416-747-6600 یا مجھ سے یعنی آلیجا سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے 647-848-4020 647-848-4020.
کیا آپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انوالو ہیں اور آپ کو بہترین لائر کی تلاش ہے؟ ہیموفار پریزنس کی آپ کے لیے ایک جانا پہچانا لائر ہے, اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کے مسئلوں کو ان تک پہنچاتی ہوں. ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. کار ایکسیڈنٹ میں آپ کا مشورہ لینا آپ کا قانونی حق ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-570-0157. جی ہاں, 416-570-0157.
परिवार ही सब कुछ है। दुनिया भर में अब उनके साथ जुड़ना थोड़ा आसान हो गया है। अब जब आप सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर भेजते हैं तो विदेश में आपके प्यारे इसे उसी दिन अपने पास की मनीग्राम लोकेशन से नकद में ले सकते हैं, और ये सब बिना किसी ट्रांसफर फी के, ताकि आप अपने प्यारों को भेज सकें और ज्यादा। उनकी मदद करने का यही सही तरीका है। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ परिवार कभी भी दूर नहीं। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू हैं। cibc.com/cashpickup पर जाएं।
जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन, एंड सॉरी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, मगर मैं किसी भाई साहब से बात कर रहा था। देयर वाज वेरी करेक्ट व्हाट एवर भाई साहब यू सेइंग, आई एग्री विद यू 100%, दैट वाज अ मिस्टेक। एनीवे, चलिए साहब, अगर आपने कॉल करना है, कुछ भाई साहब के लोगों के कॉल्स आ रही थी, 4166201778 हमारा फोन नंबर है, 4166201778 हमारा फोन नंबर है, एंड इफ यू वांट टू गिव अस अ कॉल, बाय ऑल मींस यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव अस अ कॉल।
हाँ मजीद भाई, आज आप भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे थे, जरा उसका भी जिक्र करें, जो क्वीन विक्टोरिया वाली थी।
हाँ, वो उसकी पूरी स्टोरी हम बताएंगे आपको।
अच्छा अच्छा अच्छा,
क्वीन विक्टोरिया एंड उनके एक मुलाजिम होते थे इंडिया में।
अच्छा।
क्वीन विक्टोरिया एंड मुलाजिम की उम्र 24 years old, एंड वो जो है उस